जना गिरिवर धारी जय गोपी जना बला गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज नरंजन यशोदा नंदन व्रज नरंजन यशोदा नंदन व्रज नरंजन यमुना तेरा वन चारी यमुना तेरा वन चारी जय राधा माधवा तुझ बिहारी जय राधा माधवा तुझ बिहारी जय गोपी जना बलावा गिरिवर धारी जय गोपी जना बला गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज नरंजन यशोदा नंदन व्रज नरंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वन चारी जय राधा माधवा तुझ बिहारी राधा माधवा तुझ बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर भक्तवृंद गदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
बोलिए
हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Hare Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jago Haribo, 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 Haribo. Jago Haribo, 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 Haribo.
Gaur Premanande Haribo. Jago Vishnu Pada, Jani Gajra Vajra Bhavada Ki. Iskon Vidur Vajra Bhavada Ki. Anant Koti Vaisa Bhakta Vinda Ki. नमाचार श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्त बिंद की जय श्री सिद्धाग्रधारी भगवान की जय श्री जमसुंदर मैया की जय श्री गौनिदाय की गौर विवानंदे हरि बोल। all going to Samadhi Hori, Hare Krishna. All going to Samadhi Hori, Hare Krishna. All going to Samadhi Hori, Hare Krishna. All the Sri Guru and Guranga Sri Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswati Vyasa. Tato Jayamudire. Nasto Prayas Bhadresu. Nityam Bhagavata Sivaya. Bhagavate Uttama Sloke. Bhaktir Bhavate Naishaki. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, 10th skand, adhyay sankhya 2. अध्याय का शीर्षक है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। श्लोक संख्या 8 का हम पाठ करेंगे। देवक्या जठरे गर्भम शीत आख्यम धाम मामकम त सनिकृष्या रोहिण्या जठरे सनिदेश्या देवक्या जठरे गर्भा देवक्या जठरे गर्भा शेषाख्यं धाम मामकम् शेषाख्यं धाम मामकम् तत्सन्निकृष्य रोहिण्या तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे समनिवेशया उदरे समनिवेशया देवक्या जठरे गर्भ शीर्षाख्यं धाम मामकम् तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे समनिवेशया देवक्या जठरे गर्भम् शीर्षाख्यं धाम मामकम् तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे समनिवेशया। देवक्या जठरे गर्भम् धाम मामकम् समनिवेशया देवक्या जठरे गर्भम् धामावकम् समनिवेशया गत्या जठरे गर्भम् साख्यं धामामकम् तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उधर सामनिवेश देव क्या जठरे गर्भ साख्यम धामक तत्कृत्य रोहिण्या उधर सामनिवेश माता जी देवक्या जठरे गर्भम से साक्यं धामामकं तत्सन्निकृत्य रोहिण्या उदरे रोहिण्या उदरे सन्निवेशया यस देवक्या देवकी के जठरे गर्भ में गर्भम भूड शेष आख्यम किस के अंश है शेष नाम से विख्यात धामा अंश मामकम मेरा तत् उसको सनिकृष्या निकाल करके रोहिण्या रोहिणी के जठरे गर्भ के भीतर सन्निवेश्य बिना कठिनाई के हस्तांतरित करो अनुवाद प्रभात प्रभात की जय। देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में हस्तांतरित कर दो। कृपा अनुवाद को दोहराइए देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है तो उसे बिना कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में हस्तांतरित कर दो। तात्पर्य प्रभात की जय। किस के प्रथम अंश बलदेव हैं जो शेष भी कहलाते हैं। भगवान का शेष अवतार सारे ब्रह्मांड को धारण करता है और इस अवतार की शाश्वत माता है माता रोहिणी। भगवान ने योग माया से कहा क्योंकि मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूं अतः शेष अवतार पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने मेरे भगवान की जय रमैया की जय। क्योंकि मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूं अतः शेष अवतार पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। अब उन्हें अपनी माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करना चाहिए। इस संबंध में कोई पूछ सकता है कि भगवान जो सदैव के रूप में स्थित रहते हैं किस तरह देवकी के उस गर्भ में प्रवेश पा सके जिसमें पहले से छह असुर सड़गर्भ बास कर चुके थे। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि सड़गर्भ असुर भगवान के दिव्य शरीर के तुल्य थे। इसका उत्तर श्री विश्वनाथ ठाकुर ने दिया है जो इस प्रकार है समग्र सृष्टि तथा उसके देशी अंश भी भगवान की शक्ति के विस्तार है। इसलिए भौतिक शक्ति भौतिक जगत में भगवान प्रवेश करके भी ऐसा नहीं करते। इसकी व्याख्या भगवान ने स्वयं भगवद गीता में नवे अध्याय के चार और पांच श्लोक में की है। मयातम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम भूतिना मतस्थानी सर्वभूतानि नाहम सेवस्थित न मत्थानि भूतानि पश्चमे योगमेश्वर भूत भिन्न च भूतस्थो आत्मा भूत भावनः। ये समग्र ब्रह्मांड मेरे अप्रगट रूप में मुझसे व्याप्त है, सारे जीव मुझमें है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। फिर भी हर सृजित वस्तु मुझमें टिकी नहीं है। मेरे एक ऐश्वर्य को तो देखो, ऐसी मैं सारे जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र रहता हूँ किंतु मेरी आत्मा सृष्टि का उद्गम है। सर्वकदम इदम ब्रह्म, हर वस्तु ब्रह्म अर्थात भगवान का अंश है, फिर भी हर वस्तु ईश्वर नहीं है और ईश्वर स्वतंत्र है और नहीं भी। हर वस्तु उन पर टिकी है और नहीं भी टिकी है, इसे केवल अचिंत्य अभेद अभेद दर्शन द्वारा समझा जा सकता है। फिर भी ऐसे शब्द का शुद्ध भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवद गीता में 18 अध्याय के 15 श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्तिया माम अभी जानाति यावन चास्मी तत्वतः। भगवान को उनके असली रूप में केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। एक ही समान व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकते किंतु इस सिद्धांत को शास्त्रों के कथन से समझा जा सकता है। शुद्ध भक्त भक्ति योग की 9 विभिन्न विधियां संपन्न करके श्रवणम कीर्तनम विष्णुवर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षम आत्मनिवेदनम दिव्य पद पर आसीन रहता है। इस तरह भक्ति को प्राप्त भक्त इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसमें नहीं रहता, इतने पर भी भक्त सदा डरता रहता है कि भौतिक जगत के सानिध्य होने से उसे अनेक कलमश प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वह सदैव भय के कारण चौकन्ना रहता है, जिससे उसका भौतिक सानिध्य क्रमशः घटता जाता है। प्रतीक रूप में माता देवी का कंस से निरंतर डरना उन्हें शुद्ध बना रहा। शुद्ध भाव को सदैव भौतिक सानिध्य से डरते रहना चाहिए। इसे भौतिक सानिध्य में रहने वाला सारे असुर का वध हो जाएगा, जिस तरह कंस के द्वारा खड़ गर्म असुरों का वध हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मरीची मन से प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में मरीची मन का अवतार है। मरीची के 6 पुत्र काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मत्सर्य भगवान शुद्ध भक्ति से प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों द्वारा हुई है। भक्तिर वे नयम दर्शयति ही, केवल भक्ति से ही मनुष्य भगवान को केवल भक्ति से ही मनुष्य को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। भगवान देवकी गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए देवकी भक्ति का प्रतीक है और कंस भौतिक भय का प्रतीक है। जब भक्त भौतिक सानिध्य से डरता रहता है तो उसकी असली पद भक्ति प्रकट होती है, जिससे उसमें भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब मरीचि के 6 पुत्रों का ऐसा भय द्वारा वध हो जाता है और मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो भक्ति के गर्भ से भगवान उत्पन्न होते हैं। और इस तरह देवकी के 7वां गर्भ भगवान के प्रकट का को सूचित करता है। जब काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य ये 6 पुत्र मार डाले जाते हैं तो भगवान के प्रकट हेतु शेष अवतार उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। दूसरे शब्दों में जब मनुष्य में उसकी सहज कृष्ण चेतना जागृत होती है तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री रविदास ठाकुर यही व्याख्या है। ओम ज्ञान तिमिरांध ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। देवक्य आदर्शे गर्भम से साक्ष्यम भाम धाम महामकम तब सनिकृष्य रोहिण्या उदरे सम निवेश तो भगवान सिद्धार्थ जी सुभद्रा जी और गौणी ताई जी प्रभुपाद और सभी वैष्णवों को विशेष कृपा है कि जब ही मैं मिरर आता हूँ तो हमको क्लास देने का मौका मिलता है। हालांकि मैं यहाँ पर सेवा के लिए आता हूँ और श्रवण करने के लिए आता हूँ कि श्री भक्त लोग कितना हमसे प्रेम करते हैं, नहीं प्रभु जी क्लास दीजिए। वास्तव में यही भक्तों का आनंद है, प्रेम है। मचिता मद प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंती दमंती चा दमंती चा यानी मचिता मद प्राणा बोधयंत परस्परम आपस में भगवान कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं। इसे क्या होता है तुष्यंती चा रमंती चा भक्त इसी में आनंद प्राप्त करते हैं। और इसे हमारा जीवन की इसी में सफलता है। वास्तव में कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम, कृष्ण कथा उनकी गूढ़ लीला एक औषधि है और अमृत भी है। औषधि है हमारे भाव रोग को नाश करने के लिए, और जब भाव रोग का नाश हो जाता है तो ही कृष्ण की कथा हमको भक्ति के आनंद में हमको आनंद प्रदान करता है, भक्ति के रस में हमको आनंद प्रदान करता है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए जलदूत के द्वारा, वहां के जब दृश्य को देखे कि प्राय सभी व्यक्ति भौतिक भोग में लगा हुआ है, दृश्य को देख करके उनके हृदय बहुत करुणा उठा इस जीवों के प्रति। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस बोसेल शहर में सारे लोग भौतिक भोग में लगे हुए हैं, कौन व्यक्ति आपकी कथा को सुनेगा, किसके पास समय है, लेकिन यदि आपकी कृपा हो जाएगी तो ये लोग अब कथा को सुनेंगे और समझ सकते हैं और आपका शुद्ध भक्त बन सकते हैं।
तब इच्छा यदि हो तादेर उधार बुझीबे निश्चय तबे कथा से तुम्हार, भागवतेर कथा से तब अवतार धीर भैया सुने यदि कान बार बार।
जब बार बार ये जो जी है बस जी जो कथा को सुनेंगे बार बार सुनेंगे तो क्या होगा, ये आपके कथा को समझेंगे और अपने जीवन के जो अनर्थ है उसको दूर कर सकते हैं, किस प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद प्रभुपाद जी भागवतम का श्लोक कोट करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 17-21 श्लोक तक, ये 5 श्लोक है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कौन सा श्लोक है?
श्रोतां सो कथा कृष्ण पुनः शरण कीर्तन हृदय भद्राणी विदुनोति सुहितताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी तदार्यस्तमभाव कामलोबादयस्येतेनाभिधं इत्थं सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानं मुक्तंगस्य जायते हृदयन्ते हृदयाग्रन्थि स्यन्ते सर्वसंशया स्यन्ते चास्य कर्माणि दिशय आत्मनीश्वरे।
तो 5 श्लोकों में शुद्ध गोस्वामी ने वर्णन किया है कैसे एक बस जीव भगवान का किस प्रेम प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है। जब कथा को बार बार सुनते हैं तो हृदय का अभद्राणी हृदय में जो अभद्र है उसका क्या होगा, नाश होता है। और नष्ट प्राय से नित्यम भागवत सेवया, इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने हर एक हर स्कॉन सेंटर में नित्य मॉर्निंग में भागवतम क्लास और शाम को, इसका उद्देश्य क्या है कि जब हम बार बार सुनेंगे जिस कथा सुनेंगे भागवत कथा सुनेंगे तो हमारे अभद्र धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। हम बस जीवात्मा है, अस्वाभाविक बस जीवात्मा जो इस संसार में देहात बुद्धि के अंदर है उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है और भगवान के प्रति कोई रुचि नहीं है, न भगवान के नाम में रुचि है न किस कथा भगवान की कथा में रुचि है। लेकिन जब हम जिस तरह की किसी व्यक्ति को रोग होता है तो वह डॉक्टर की बात सुनता है, आप नियमित रूप से यह दवा लीजिए तो आपका रोग धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो हम अगर औषधि के रूप में इस कथा को सुनेंगे तो क्या होगा, जो रोग है धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और जो प्रकृति के 3 गुण हैं सत्वगुण रजगुण तमगुणा, तो व्यक्ति तमगुण से रजगुण रजगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से सत्वगुण में आकर और भगवान के धाम जा सकता है और हमेशा प्रसन्न रहेगा। आप किसी से बातें करते हैं व्यक्ति हमेशा उदास रहता है, क्यों, क्योंकि बस जो आत्मा का परिवर्तन क्या है वह उदास रहेगा दुखी रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में रहता है तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हमेशा प्रसन्न रहेगा। जो व्यक्ति प्रसन्न है यानी ब्रह्मभूत अवस्था में है न श्रुति न कांक्षति ही सम सरसु मद भक्ति लभते पराम, तो ऐसे किस कथा को सुनने से उसके सारे जो संशय हैं दूर जाते हैं, विद्यंती हृदय ग्रंथि सर्व संशया, सारे संशय से दूर जाते हैं और किस्त में उसकी एक एक निष्ठ भक्ति स्थापित हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक होते हैं मुक्त जीवात्मा, तो मुक्त जीवात्मा का स्वाभाविक भगवान के नाम और उनकी कथा के प्रति रुचि होती है। अभी हमारे खारघर मंदिर में भागवतम तृतीय स्कंद चल रहा है। प्रसंग है कि चतुर कुमार बैकुंठ धाम गए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम का वर्णन कर रहे हैं कि बैकुंठ धाम का दृश्य कैसा होता है, देवताओं को सुना रहे हैं। ये बैकुंठ धाम जहां कोई कुंठा नहीं है और जहां के हर एक वस्तु चिन्ह में है, हर एक वस्तु सक्रिय है, हर एक व्यक्ति वस्तु का स्वाभाविक आकर्षण भगवान के प्रति है। और सबका किस कथा के प्रति रुचि है। अभी यहां पर तो एक घंटा भगवत क्लास हो गया, उसके बाद श्रीराम बिजी हो गए, लेकिन वहां पर वैकुंठ धाम में नित्य भागवत कथा होती रहती है। एक स्पीकर खत्म हुए, अपना लेक्चर खत्म किए, दूसरा स्पीकर, तीसरा स्पीकर आ गया, 24 घंटे किस कथा वहां पर चलती रहती है। तो वहां के जो वक्ता है और श्रोता है, ये दोनों किस कथा में आनंद लेते हैं। मनुष्य नहीं बल्कि जानवर भी, और जानवर ही नहीं पक्षी भौरे सभी पेड़ पौधे तक भगवान कथा को सुनने के लिए आकृष्ट रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भौरे भगवान कथा जब शुरू करते हैं, तो जितने ही पक्षियां हैं जो करलो करती है, वो सभी अपना आवाज बंद कर देते हैं, बिल्कुल शांत, और क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किस कथा सुनते हैं, तो इस तरह से वहां के जीव हैं बिल्कुल उनका हृदय कलमश से मुक्त है, कोई द्वेष नहीं है, आपस में इतना प्रेम है एक दूसरे भक्तों के साथ, भगवान से इतना प्रेम है कि उनका हर एक शब्द क्या है, गीत है, भगवान का गुणगान है। प्रभात जी कहते हैं अवर स्कॉन टेम्पल इज ए बैकुंठ धाम, हमारा स्कॉन मंदिर क्या है, बैकुंठ धाम है, और यहाँ बैकुंठ का वातावरण है, एक किसी भक्त एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं है। यहाँ पे एक ही कार्य है, किसका नाम का जब किसकी सेवा करना, एक ही सेवा है, एक ही कार्य है, किसकी सेवा करना, किसका गुणगान करना। तो इस तरह का वातावरण बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करना है, और इसी उद्देश्य से भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं और लीलाएं करते हैं, ताकि लोग जीवात्मा मेरी कथा को सुनेगा और जब श्रवण करेगा तो उसके अभद्र दूर होंगे और उसका मन वह भगवान शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम चला जाएगा। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं त्यक्तो आदि हम पुनर्जन्मेति मामेति सु अर्जुन, इसी उद्देश्य भगवान यहाँ पर आते हैं और लीलाएं करते हैं। तो बाकी भगवान को बैकुंठ धाम में या गोलोक धाम में किसी चीज कमी नहीं है। लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान यहां अवतार क्यों लेते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या बैकुंठ धाम में गोलोक धाम में भगवान को वहां सेवक की कमी है या कुछ चीज कमी है। नहीं, बैकुंठ धाम में तो लाखों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहती है। वहां जो फर्श है ये जो चिंतामणि पारस मणि से बने हुए हैं, बिल्कुल साफ सुथरा निकल क्लीन है, लेकिन फिर भी वहां के सेवक क्या करते हैं, झाड़ू मारते हैं। क्यों, झाड़ू मारने की जरूरत नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी झाड़ू मारते हैं, क्यों, ये भगवान के प्रति प्रेम है, सेवा का भाव है। तो हमें ऐसा नहीं कि मंदिर अब मैं साफ कर रहा हूं तो हमको मैं मंदिर को साफ कर, ऐसा नहीं कि भगवान के प्रति प्रेम है इसलिए मंदिर की सफाई हो रही, मैं भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये भाव सेवा का भाव है, बहुत दिव्य है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त भगवान का नाम जब करते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है, लेकिन जब सेवा करते हैं तो सेवा में इससे भी अधिक आनंद प्राप्त होती है। तो यह है भक्ति का आनंद है, क्योंकि हम बस जीव आत्मा है, इसलिए भक्ति के जो विधि विधान का पालन करने में हमको हमको कठिनाई होती है, तकलीफ होता है। वास्तव में भक्ति आनंद की चीज है। नवदा भक्ति हम पालन करते हैं, सर्वम कृष्ण विष्णु स्मरणम, जो नवदा भक्ति पालन करते हैं ये आनंद की विषय वस्तु है। ब्रह्म उठना, मंगलातीर्थन करना, जप करना, सेवा, ये आनंद की विषय वस्तु है। हमको तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि हम बस जीवात्मा है, हमारी इंद्रियां क्या है, भौतिक भोगों में लगी हुई है। लेकिन जब यही भक्ति का अभ्यास करते करते जब इंद्रियां सुख हो जाती है तो इसी भक्ति को संबंध करने में हमको क्या लगता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो यह है भक्ति का रहस्य। तो ऐसे भागवत कथा भगवान का गुणगान हमें वैसे कथा वास्तव में सुनना है जिसका हृदय भौतिक कलमश से मुक्त हो गया हो। निमित्त तरह से ही बगी या माना, जिसका हृदय भौतिक भोगों से मुक्त हो गया है, जिसका आकर्षण भौतिक भोगों में नहीं है, ऐसे उत्तम भागवत के द्वारा ही हमें भागवत सुननी चाहिए। तो आप प्रश्न करेंगे कि अभी कथावाचक जो है, जैसे मैं हूं, भौतिक अभी हमारा मति तो भौतिक भोग में लग रही है, इसे क्या हमारा शुद्धि नहीं होगी? इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी हम क्लास में वर्णन कर रहे हैं अपने मन से वर्णन नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रभुपाद जी की जो टीका है उसकी हम सिर्फ दोहरा रहा हूं एक तोते की तरह। तो यह कथा वास्तव में प्रभुपाद जी दे रहे हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर है, उसको सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उत्तम भागवत जो है भागवत है, तो उनके द्वारा जब श्रवण करते हैं तो हमारा जो हृदय जो है शुद्ध हो जाता है। और यह भागवत भव औषधि, औषधि है, राम बाण औषधि कैसा है, राम बाण के समान है, राम बाण औषधि है। इसमें कोई मिस्टेक की सवाल नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम कथा सुनेंगे तो क्या हमारा भवरोग दूर हो गया, क्या हमारे हृदय से कलमश दूर हो गया, जैसा कि हम लोग डॉक्टर के पास पूछते हैं, दवा लेते हैं ना, डॉक्टर साहब क्या दवा लेने से हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, उसको डाउट होता है पेशेंट को। लेकिन यह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या कि यह जो भागवत कथा जो है राम बाण औषधि है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर शुद्ध है। एग्जाम्पल क्या है, ध्रुव महाराज का, ध्रुव महाराज के मन में भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा थी, उनको भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा थी। तो इसके उद्देश्य से उन्होंने माता के आदेश से जंगल में गए और वहां पर उन्होंने तपस्या किया, मंत्र जाप किया, कौन सा मंत्र है, ओम भगवते वासुदेवाय। और जब करते करते 6 महीने के अंदर भगवान की प्राप्ति किए, जैसे भगवान का दर्शन हुआ तो उनके हृदय में जो भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्त करने की इच्छा थी वह खत्म हो गया। और क्या बोलते हैं कि हे भगवान, अभी हमको यह भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए। ये जो भौतिक ऐश्वर्य कैसा है, कांच के टुकड़े के समान है, अभी आपका दर्शन हो गया, अभी हमारी सारी इच्छा पूरा हो गया है। तो इस तरह से यह भागवत कथा कैसा है, तो भव औषधि, भव औषधि, भव सागर को दूर करने के लिए, भव रोग को दूर करने के लिए एक औषधि है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हमारा भाव रोग है, इसको दूर करने की व्यक्ति क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत सिद्धि है। इसलिए चतुर महाप्रभु कहते हैं कि एनेसी औषधि माया नासी बार लागे, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम मांगे। बोलते इसी भाव रोग को दूर करने के लिए मैं एक दवा एक औषधि लेकर आया हूँ, औषधि क्या है, महामंत्र है, और इसको तू मांग लो। ये महामंत्र के द्वारा हमारा भाव रोग दूर करने के लिए भगवान ने औषधि लाया है, माया को नाश करने के लिए। तो ऐसे कि भगवान की कथा की महिमा है, लेकिन ऐसे कथा में किसको रुचि नहीं होती है, जिसका जिसका मन ही भौतिक भोगों में लगा हुआ है, जो वास्तव में आत्मघाती है, पशु घना है, ऐसे व्यक्ति का ही मन कथा में नहीं लगता है। जो अपने आत्मा का हनन करने वाले हैं, जो पापी व्यक्ति हैं, जो हत्या करते हैं, जो मांस जो गोवध करते हैं, पशु की हत्या करते, ऐसे व्यक्ति का ही कथा में रुचि नहीं होती है। यहां तक कि भगवान भवगीता में कहते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम चेतसाम व्यवसायी आत्मा समाधो न विधीयते। जिस व्यक्ति का मन भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का मन भगवान कथा में नहीं लगता है, समाधो न विधीयते। और अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान कथा में हमको रुचि नहीं है तो क्या कर रहे हैं, जानिया सुनिया बीस बीस खा रहे हैं, हम बीस खा रहे हैं। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी कथा में रुचि नहीं आ रही है, हम हो कथा में कथा लोग को नहीं श्रवण कर रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो जान बुझकर क्या कर रहे हैं, बीस खा रहे हैं। लेकिन जो जिसका हृदय भौतिक भोगों से मुक्त हो चुका है वो आत्माराम, ऐसे महाभागवत का रुचि स्वाभाविक तरीके से भगवान कथा में लगता है। और इसी उद्देश्य से व्यास जी ने भागवत की रचना किया है। भागवत के प्रथम स्कंध के सातवां अध्याय में यह बताया गया है कि व्यास जी ने भागवत की रचना क्यों किया, क्योंकि साधारण व्यक्ति को ज्ञात नहीं है, जीव के समग्र भौतिक कष्ट जिन्हें वो अनर्थ समझता है, भक्ति योग के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से हम नष्ट कर सकते हैं, किंतु जन समुदाय इसको नहीं जानते हैं और न जानने के कारण वे संसार में कष्ट भोग रहे हैं, बार बार अहर्निश कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। इसीलिए व्यास जी ने भागवतम का उन्होंने रचना किया है। अनर्थो प्रथम साक्षात भक्ति योग लोकस्य अजानतो, साधारण व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि कथा को सुनने से हमारा कष्ट दूर होगा। तो ऐसे जन समूह के कल्याण के लिए व्यास जी ने भागवत की रचना किया है। लोकस्य अजानतो विद्वान चक्र सत्ता संहिता, ये भागवत की रचना किया गया है। एकमात्र उद्देश्य है जीवों के कष्ट को दूर करने के लिए, एकमात्र उद्देश्य है। इस अभी हमारे ऊपर है कथा को हम कितना श्रवण कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह भागवत दसवें स्कंध में वर्णन किया गया है कि जब सुखदेव गोस्वामी नवे स्कंद तक भागवत सुना दिए प्रथित महाराज को, तो प्रथित महाराज का जो भागवत सुनने की जो उत्कंठा है और बढ़ गया। अभी हमको भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन कीजिए, जो ये गुणों के निधि हैं, गुणों के सागर हैं, और जो भगवान हमारे बाबा अर्जुन ने जो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, ऐसे महाभारत यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध असल के भव सागर से पार हो गए, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से पार हो गए। तो ऐसे भगवान किसके बुद्धि विभूतों के बारे में बताइए, उनको उत्कंठा बढ़ गया है। और खुद मैं जो है जिनकी कृपा से हमको मारने के लिए, जब मैं गर्भ माता के गर्भ में था तो समा के ब्रह्मास्त्र और समा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा हमको नष्ट करने के लिए, लेकिन जिनकी कृपा से हमें बच गया, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कीजिए। ये प्रसिद्ध महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। हालांकि ये बहुत प्रश्न करते हैं, जिसमें कि एक प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। तो कौन सा प्रश्न है? रोहिण्या तनया प्रोक्तो राम संग सृष्टया देवक्या गर्भ संबंध पुतो देहांतर बिना, कि रोहिण्या तनया प्रोक्तो राम संकर्षण, जो बलराम जी है रोहिणी के पहले, ऐसा आप जानते हैं और ये भी जानते हैं कि बलराम जी देवकी के पुत्र भी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाने से पहले ही प्रसिद्ध महाराज भागवतम मालूम था, नहीं तो ये कैसे उनको जानकारी हुआ? उनको पहले से जानकारी था कि भगवान की लीलाओं का, ये पूरे किस लीला उनको पहले से मालूम था। तो ये और अनंत के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि बलराम जी द्रोहिणी के पुत्र हैं और ये भी ज्ञात है कि बलराम जी देवकी के पुत्र भी हैं, ये कैसे संभव हुआ? एक ही बालक है, एक ही भगवान जो है देवकी के पुत्र भी हो और रोहिणी के पुत्र भी, कैसे संभव हुआ? एक ही व्यक्ति का दो माता कैसे हो सकती है? रोहिण्या तनया प्रोक्त हो राम सकृतया देवक्या गर्भ संबंध पुत्र देहांतर बिना, जब तक देहांतर नहीं होगा, जब तक बेटी शरीर नहीं छोड़ेगा, तो कैसे दूसरे माँ के गर्भ में जन्म ले सकता है देहांतर बिना? अभी हम इस जन्म में एक माता के गर्भ जन्म लिया, इसके बाद जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो दूसरे माता के शरीर से हम जन्म ले सकते हैं, लेकिन एक ही जन्म में दो माता गर्भ से कैसे जन्म ले सकते हैं? ये प्रसिद्ध महाराज के मन में क्या था? डाउट था, संशय था। इस संशय कैसा संशय था? ऐसा नहीं कि चैलेंजिंग मूड में पूछ रहे थे कि भागवतम का गलत है, ऐसा नहीं। एक बार हम लोग एक प्रोग्राम में गए थे तो एक व्यक्ति प्रश्न किया, भगवान निराकार है क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, तो उनका प्रश्न जो करने का जो तरीका था कैसा था? चैलेंजिंग मूड में, नहीं आप जो बोल रहे हो सही नहीं, इस सत्य है, कैसा प्रश्न करना है वो भी हमको जानना है। तब विधि परिपाते ना परिप्रश्न सेवया, हमको नम्र भाव से प्रश्न करना है। तो यहां पर प्रसिद्ध महाराज बहुत ही नम्र भाव से प्रश्न कर रहे हैं, हालांकि उनको जो डाउट था प्रश्न था बहुत प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न था, और किसी व्यक्ति को डाउट हो सकता है कि बलराम जी रोहिणी के भी पुत्र हैं और देवकी के पुत्र हैं एक ही जन्म में, कैसे संभव है? ये डाउट क्लियर जो है स्वाभाविक है। तो इसके उत्तर में आज के श्लोक में बताया गया है क्या है कि भगवान ने योग माया को आदेश दिया था, जैसा कि पिछले श्लोक में आपने श्रवण किया होगा कि कंस के भय से जितने भी यदुवंश के राजा हुए सभी छिप गए थे, भाग गए थे उसके भय से। कंस का इतना अत्याचार था उस समय कि जितने भी यहां पर राजा का नाम बताया गया है, कुरु पंचाल कै सालव विदर्भ निषेधो विदेहो कौशल, ये जितने भी राज हैं ये सभी राजा जो है छिप कराते थे और यहाँ तक कि वसुदेव की जो पत्नियां हैं वो भी चुप रहती थी, और एक इनकी पत्नी रोहिणी जी नंद बुआ के पास रहती थी, क्योंकि कंस को मालूम हो गया था कि देवकी के अथवा गर्भ हमारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो अभी कंस को ज्ञात हो गया कि अथवा गर्भ है, तो वह वसुदेव जी के जब प्रथम पुत्र था, प्रथम शिशु था, उसको छोड़ दिए। तभी नारद जी के में ऐसा डाउट हुआ, नारद जी सोचे कि अभी कंस ऐसा छोड़े गया तो उसका भगवान का जल्दी अवतार नहीं होगा, भगवान सब नहीं आएंगे। तुरंत नारद जी जाते हैं उसके पास, बोलते उसको बोलते हैं महामूर्ख, बोलते हैं तुम महामूर्ख हो, क्यों? क्योंकि जितने भी यदु वंश के राजा हैं ये सभी कौन है? देवता लोग हैं, और ये वसुदेव के जो भी शिशु जन्म लेगा वो सभी सभी देवता लोग हैं, और उनका जन्म लेने का एक ही उद्देश्य है आपका मृत्यु, आपको मारने के लिए एक ही उद्देश्य है, राइट? तो इस तरह से आपके सब दुश्मन हैं, जितने भी यदु वंश में राजा हैं और देवकी के जितने भी पुत्र हैं सब आपके कौन हैं? दुश्मन हैं। तभी कंस को यह मालूम हो गया, कंस बहुत भयभीत हो गया, और उन्होंने सोचा कि नहीं, सारे पुत्र को मारना है, सबको मारना है, क्योंकि सभी हमारे दुश्मन हैं। तो उसके भय से सारे राजा छिपने लगे, और वह देवकी के जो पुत्र था पर उसको बुलाया, मंगाया उसको मारने के लिए। तो इसी जब भगवान देखे कि कंस के भय से हमारे भक्त लोग बहुत तकलीफ में कष्ट में हैं, कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्तों और यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्व आत्मा भगवान ने योग माया को यह संदेश दिया। भगवान बहुत कृपालु हैं, जब भक्त कष्ट में होते हैं तो भगवान को बहुत दुख होता है, तो अपने भक्तों के अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, और क्योंकि ये जो आत्मा है वो सबके सभी जीवों के बारे में जानते हैं, तो अपने भक्तों को कष्ट को मान होकर के उन्होंने योग में आदेश दिया, क्या तुम जो है अभी देवकी घर में बलराम जी है, मेरा अंश, मेरा ही अंश है, प्रथम विस्तार बलराम जी है, उनको रोहिणी के घर में ट्रांसफर करो। तो यहां पर भगवान के लिए आया है, भगवान को क्या है? विश्व आत्मा है, ये सारे विश्व के आत्मा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस तरह मैं शरीर के अंदर वास करता हूं तो हमको सिर्फ इस शरीर के बारे में मालूम है, इस शरीर में क्या हो रहा है, लेकिन भगवान ये पूरे पूरे विश्व के आत्मा है, तो विश्व में क्या हो रहा है उनको उसी तरह से मालूम है, क्योंकि वो क्या है? सर्वव्याप्त है, सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी होने के कारण वो सारे विश्व के बारे में जानते हैं, सारे जीवों के बारे में जानते हैं, उनका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, भगवान से कोई बात छिपा हुआ नहीं है। भगवान अपि विश्व आत्मा विदित्वा कंसे न भयम् विश्व आत्मा, तो भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में है, ये विश्व व्यापी है और विश्व आत्मा है, तो इसीलिए ये भक्तों के जो कष्ट था उनको मालूम हो गया, उनको रक्षा करने के लिए भगवान योग माया को आदेश देते हैं। तो भगवान कैसे अनेक अनेक शक्तियां हैं, योग माया महामाया, तो भगवान जो भी कार्य करते हैं ये अपने शक्ति के द्वारा करते हैं। इस जगत में भगवान की महामाया कार्य करती है, जो जीव भगवान से विमुख है उनको संचालन करने के लिए भगवान महामाया कर रखा है। दुर्गा देवी इनको आप संचालन करो, उनको आप नियंत्रण करो, और जो व्यक्ति जो जीवात्मा भगवान का भक्त है उसको आनंद देने के लिए योग माया को रखे हैं। इसलिए देवकी इसलिए कुंती महारानी ने प्रार्थना करती है, माया जवनिका क्षणम अगर अव्यम, माया जवनिका क्षणम, माया के प्रभाव में योग माया ने भगवान के भक्तों को अवित कर दिया है ताकि वे नहीं सके कि ये भगवान है, इससे किस भगवान है। अगर भगवान के जो भक्त है समझ जाएगी ये किस जो भगवान है, जैसे जैसे यशोदा माता का मालूम हो जाए कि किस क्या है मेरा पुत्र लाला मेरा भगवान है, तो कैसे लीला करेगी। तैसे भक्तों को भगवान की योग माया अवित कर देती है उनको लीला को संपादन करने के लिए। और जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी भगवान की माया के द्वारा प्रभावित होते हैं, लेकिन वो किसके महामाया के द्वारा, ताकि ऐसे बस जो आत्मा भगवान को नहीं समझ सकते हैं। अवैध जाति माम मूढ़ा मानसिम तनु आशित अवैध जाति माम मूढ़ा, इसे मूर्ख व्यक्ति भगवान के महामाया के द्वारा प्रभावित जाते हैं और क्या समझते हैं मानसिम तनु आशित, भगवान जो है मनुष्य है मनुष्य मनुष्य है साधारण मानव है, अब नहीं जानते हैं कि परम भाव अजानंतो मम लोक महेश्वरम, ये हमारे जो स्वभाव को नहीं जानते दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं, इसलिए हमारा उपवास करते हैं। तो अभी हम जो है महामाया के अंदर में है, लेकिन भगवान के भक्त योग माया के अंदर में रहते हैं। तो भगवान यहां पर योग माया को आदेश देते हैं कि आप जाइए और देवकी घर में मेरा ही अंश वो क्या है देवक्या जठरे गर्भम से साक्ष्यम धाम मामकम, देवक्या जठरे गर्भम कि देवकी के गर्भ में से साक्ष्य मामकम मेरा ही अंश देवकी के गर्भ में है। तो कौन है और बलराम जी हैं उनको रोहनिया उदरे सनी व्यस्त रोहनिया यानी रोहिणी के घर में उसको आप निवेशित कर दीजिए बिना कठिनाई का बिना तकलीफ के बिना कठिनाई के ही आप देवकी गर्भ में जो मेरा अंश है बलराम जी हैं उनको रोहिणिया उदरे सनी व्यस्त रोहिणी के घर में आप असाइन कर दीजिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से बता रहे हैं कि बलराम जी कौन है, कि बलराम जी भगवान के प्रथम विस्तार हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान का प्रथम विस्तार कौन है बलराम जी है, और बलराम से किसका विस्तार होता है चतुर्व्यूह संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, संकर्षण से चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, इस तरह से चतुर्भुज का विस्तार होता है। और महासंकर्षण आते हैं नारायण का विस्तार होता है, और नारायण से विस्तार किसका होता है महाविष्णु का, और महाविष्णु से किसका विस्तार होता है गरुड़ भाई विष्णु का होता है, और उनसे किसका होता है विस्तार शिव भाई विष्णु का होता है। तो इस तरह से इस यहां पर जितने भी अवतार हुआ है जो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को अवतार के बारे में वर्णन करते हैं, जिसमें कि छह अवतार प्रमुख बताया गया है, लीला अवतार युगा अवतार पुरुषा अवतार ममंतर अवतार सत्यावेश अवतार और युगा अवतार गुणा अवतार, इच्छा अवतार है। ये सभी अवतार कहाँ से आते हैं भगवान किस से आते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, भगवान ही परम कारण है। तो प्रभात जी कहते हैं किस के प्रथम अंश बलदेव हैं जो शेष भी कहलाते हैं, इससे से इस पृथ्वी जो 14 भुवन है 14 भुवन जिसके ऊपर टिका हुआ है वो कौन है अनंत शेष है, अनंत शेष के फन पर ही पूरा लोक जो है टिका हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि अनंत शेष को बहुत तकलीफ हो रही है कितना भारी है, नहीं वे मानो कि एक सरसों की दाना होता है उसके साइज में है पूरा जगत। तो भगवान अनंत देव शेष जो है बलराम जी का बलराम जी तो किस का पूरे पांचों रस में सेवा करते हैं, शांत रस में, दास रस, सख्य रस, स्वासन और माधुर रस है, सभी रसों में बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। और आगे बताया गया है प्रभुपाद जी एक आचार्यों को टीका ऐसे लिखते हैं, तो व्यक्ति पूछ सकता है कि भगवान जो सदैव दिव्य पुरुष है, किस तरह देवकी के उस गर्भ में प्रवेश पा सके जिसमें पहले से 6 असुर बास कर चुके थे। कि देवकी गर्भ में 6 जो शिशु थे कौन थे? मरीची के 6 पुत्र थे। और कौन थे? तो हिरण्यकश्यपु के पोते थे, इसे असुर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आचार्यों को टीका लेकर कहते हैं कि देवगर्भ में 6 पुत्र आए जो असुर थे। तो भगवान किस प्रकार उसी गर्भ में प्रकट हुए जहां असुर वास कर रहे हैं? भगवान किस कैसे आ सकते हैं? ये डाउट निकाल रहे हैं। तो विशाल ठाकुर कहते हैं कि ये पूरा जगत जो है भगवान का विस्तार है। जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो जगत से यहाँ प्रकट होकर के भी जगत में है भी और जगत में नहीं भी है। कैसे? उन्होंने भगवद्गीता का 2 श्लोक कोट किया है, मया इदम तदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न मतलब स्थानी सर्व भूतानी न चामते वस्थित न भूतानी भूतानी समयोग ईश्वरम भूत अभिन्त भूतस्व मम आत्मा भूत भावना। इनवे अध्याय का 4 और 5 श्लोक है, 2 श्लोक है जिसमें भगवान की अतिथ भेद अभेद अभेद तत्व का वर्णन किया गया है। भगवान इस जगत में व्याप्त है, मैं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, भगवान जो है इस जगत में व्याप्त है मतलब स्थानी भूतानी, और सारे जीव भगवान के अंदर हैं, फिर भी भगवान सारे जीवों में नहीं है। एक सब हुआ, एक तरफ भगवान कहते हैं कि मैं अध्यक्ष रूप से सभी इस जगत में व्याप्त हूं, सारे जीव उसमें हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाली बात है, इसको कैसे समझेंगे? यानी भगवान ब्रह्म रूप में सर्वव्याप्त है, ब्रह्म परमात्मा भगवान ब्रह्म रूप में सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। और भगवान महाविष्णु के रूप में जब है तो उनके अंदर सारे जीव के अंदर है, महाविष्णु के रूप में। जब सुनते हैं ना कि जब सृष्टि होती है तो महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो उनके रोमकूप से रंग पूरी ब्रह्मांड निकलता है, और सांस जब लेते हैं तो सारा ब्रह्मांड उनके पेट के अंदर चला जाता है। तो महाविष्णु के रूप में वे सारे जीव, सारे जो भौतिक तत्व या स्पिरिचुअल तत्व, जीवात्मा हो या भौतिक पदार्थ, सभी उनके अंदर है महाविष्णु के रूप में। अभी भगवान जो है इस जगत में नहीं है, यानी भगवान जो स्वयं चांद स्वरूप है, जो दो भी धारी भगवान कृष्ण है तो गोलोक धाम में रहते हैं, इस जगत में आते नहीं है। तो इस तरह से अब इस सब भगवान के जो गीता का जो श्लोक है इसको हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म के रूप में सब व्याप्त है, महाविष्णु के रूप में सब जीव उनके अंदर है, और भगवान के रूप में भगवान इस जगत में नहीं है, इस जगत से परे है। तब बोलते हैं पस में वे सर, मेरे सर को देखो। ऐसे भगवान के लीला को साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते, मात्र भक्ति में जाते, भक्ति के द्वारा ही आप भगवान को समझ सकते हैं। एकमात्र जो है क्या विधि है? भक्ति के द्वारा। जब तक हम भगवान का भक्त नहीं बनते हैं तब तक भगवान की लीला को हम नहीं समझ सकते हैं। और इसके बाद भक्ति क्या है? तो प्रभुपाद जी एक प्रोग्राम में भक्ति के बारे में बता रहे, भक्ति क्या है? 9 भक्ति, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम तक आत्मनिवेदनम, 9 भक्ति है।
कि ताऊ से पति से पति व्यक्ति भी हो अगर नवदा भक्ति का पालन करता है, भक्तों के संग में आकर और प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रहकर नवदा भक्ति का पालन करता है तो शुद्ध भक्त बन जाएगा और ऐसा भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं एकमात्र। और ये भगवान स्वयं देवकी के पुत्र बने, देवकी भगवान देवकी बसदेव भगवान के पुत्र हैं। देवकी बसदेव भगवान देवकी बसदेव भगवान के पुत्र रूप में क्यों आए, क्योंकि देवकी बसदेव भगवान के भक्त हैं। स्वयं भगवान ने आगे प्रसंग आएगा कि भगवान कृष्ण संबोधन करते हैं देवकी बसदेव जी से कि आप लोग पूर्व जन्म में यानी सतयुग में बहुत तपस्या किए थे, हमको प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या किए थे, घोर तपस्या। कितना तपस्या? तो 12,000 साल तक तपस्या किए थे, गर्मी बारिश और शीत ऋतु में आप जंगल में तपस्या किए थे और सूखी पत्ता खा करके। ऐसी तपस्या के द्वारा हम प्रसन्न हो गए और आपके समक्ष प्रकट हुए और आपने यह वरदान क्या मांगा कि हमको आपको जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने 3 जन्म में उनको पुत्र रूप में आने के लिए वरदान दिया। तो 3 जन्म क्या क्या है? वे हैं कि आपके 52 कर्दम मुनि के रूप में आए। किसके किसके माता पिता किसके पुत्र थे? कर्दम मुनि और देव कर्दम मुनि और देहूती माता के पुत्र कौन? भगवान कपिल देव बने। और त्रेता युग में अब भगवान 52 रूप में आए थे। किसके रूप में आए थे? 52 बने थे द्वितीय और कश्यप मुनि, अद्वितीय और कश्यप मुनि के 52 रूप में आए थे। और इस जन्म में वे देवकी बसदेव में भगवान स्वयं कृष्ण आए। तो इस तरह से भगवान ने यह वचन दिया था देवकी बसदेव को जो विष्णु सुतपा जो उनके माता पिता थे उनको विष्णु गर्भ के रूप में आए। और कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र बने थे भगवान 52 देव। और अभी भगवान देवकी बसदेव के स्वयं पुत्र कृष्ण रूप में आए हैं। तो उन्होंने वचन दिया था क्योंकि देवकी बसदेव भगवान के भक्त हैं, अगर आप हम लोग भक्त बनते हैं भगवान को पसंद करते हैं तो भगवान हमारा भी उनका जो संबंध रिलेशन है वो भी कर सकते हैं, चाहे दास रूप में हो या शक्ति रूप में वासल माधुर रूप में उनका भक्त सेवा कर सकते हैं। तो यह तपस्या भक्ति क्या है? तपस्या की तपस्या तो दिव्यम पुत्र का है। जब हम तपस्या करते हैं तो हमारी इंद्रिया शुद्ध होती है और भगवान तपस्या के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। तपस्या बिना तपस्या का हम भगवान को पसंद नहीं कर सकते हैं। और कलयुग की तपस्या क्या है? नाम का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि छह पुत्र कौन कौन है? छह पुत्र और कंस और देवकी माता का उन्होंने एक उपमा दिया है कि देवकी के जो छह पुत्र हैं वो कौन है? ये हमारे छह ऋतु है, काम क्रोध लोभ मोह मद वात्सल्य, छह ऋतु है, ये देवकी के छह पुत्र है। और कंस किसका प्रतीक है? कंस प्रतीक है भय का, भय। यहां बताया क्या है? कि छह पुत्र ये छह अवगुण है, मरीचि मन का प्रतीक है, मरीचि के छह पुत्र हैं। तो ये मरीचि के छह पुत्र हुए, इस तरह से मन के अंदर ही ये मन के छह पुत्र होते हैं। कौन कौन? छह रिपु। और एक कंस भौतिक भय का प्रतीक है जिसके अंदर ये छह अवगुण होते हैं वो हमेशा भयभीत रहता है। और देवकी किसका प्रतीक है? भक्ति का प्रतीक है देवकी। देवकी माता कंस से भयभीत थी। भय का कारण क्या था? कहीं कंस जो है हमारा जो सब पुत्र को मार दिया, कहीं ये अथवा पुत्र जो उसको ही नहीं बध कर दे, ये भय था देवकी माता को। अपने लिए भय नहीं था कि हमारा मृत्यु हो जाएगा, नहीं, किसके लिए भय था? ताकि हमारा जो जो किस जो आने वाला उनको वह जो है मार नहीं दे। तो भय होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भक्तों का भय क्या है? ऐसा नहीं कि हमको कल क्या होगा, कल हम जो हमारा शरीर छोड़ना पड़ेगा, कल हम खाने के नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भय नहीं है। भक्तों का भय क्या है? भक्तों का भय है कि भक्ति कहीं हाथ से छूट नहीं जाए। और क्या भय है? ताकि भक्ति के भक्तों भय यह है कहीं हमको नेक्स्ट लाइफ ग्रहण नहीं करना पड़े, नहीं तो दोबारा हमको जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा हमें शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, दोबारा हमें भौतिक कष्ट सहने पड़ेंगे। भक्तों के यही भय है। तो जब हम ऐसे भय से भयभीत रहते हैं तो क्या करते हैं? भक्ति दिल होती है, भक्ति में उत्साह मिलता है हमको है। क्योंकि जब हमें भौतिक कष्टों से भय होता है तो भौतिक कष्टों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? भक्ति अधिक चिंता से करते हैं। इसीलिए भगवदगीता भगवान क्या कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्यास दुखानु दर्शनम। एक भक्त को हमेशा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख को हमेशा याद करना है। इससे क्या होगा कि हम भक्ति में भक्ति को बहुत गंभीरता से प्रिय से करते हैं। ऐसे करेंगे तो क्या होगा? छह जो ऋतु है शत्रु है इसे भाग जाएंगे। और ये जो मन, ये मन जो है शत्रु, छह जो पुत्र का जो पुत्र पिता है मन, ये मन भी भगवान के चरणों में लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर सभी ठाकुर कंस का, देवकी का और सब पुत्रों का उपमा देते हैं। अब अंतिका लिखते हैं, इससे हम भक्ति में दृढ़ होंगे, हम भक्ति पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लेसन क्या मिलता है हमको? हमेशा भयभीत रहना है। किससे भयभीत रहना है? ताकि हमको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़े। अगर भक्ति ठीक से नहीं करेंगे, भक्ति को ठीक से पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट लाइफ ग्रहण करना पड़ेगा, पुनः वही जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा होगा, रोग होगा, कष्ट मिलेगा हमको। तो इससे अगर बचना है तो क्या करना होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए देवकी माता भयभीत थी, यही कारण से। किसके लिए? भगवान के लिए, कि कंस आएगा और पुनः हमारे जो पुत्र हैं किस उनको मारेगा। तो ये भाई अच्छा है, ये भाई जो हमारे लिए अच्छा है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? श्री प्रभात की, श्री भागवतम की जय। गौर विवानंदे हरे हरि बोल।